सर्कल बजाओ, राउंडर को नहीं आएगा।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गुरुवर धारी। जय राधा राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गुरुवर धारी। जय राधा माधव जतोदा गज जन रंगनाजोदानंदन गज जन रंगनाजोद जो मुड़ा तीरबन सारी जो मुड़ा राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गुरुवर धारी। राधा जतोदानंदन गज जन रंगनाजोद जतोदानंदन गज जन रंगनाजोदान जो मुड़ा तीरबन सारी जो मुड़ा राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गुरुवर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दीदारी जय राधा दीदारी राधा गिरी धारी राधे,
राजाया प्रभु पर
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध अध्याय 9 श्लोक संख्या 8 अवरोह क्रम में है 10 9 8 एक एक कम आ रहा है 10 9 10 9 19 और 8 27 आइए उलुखलांग्रे उपरी व्यवस्थितम मरकाय कामं ददतं शिचिः स्थितं हैयंगवं चौर्य विसंकित तीक्ष्णं निरीक्ष्य पश्चात् सुतम् आगमत सनैहि उलूखलांग्रे रूपरि व्यवस्थितम् मरकाय कामं ददतं शिचिस्थितम् हस्यंगवं चौर्य विसंकितक्षणम् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमत् शनैः उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम् मरकाय कामं ददतं शिष्टितम् हैयंगवं चौर्य विसंकितक्षणम् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमत् शनैः उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम् मरकाय कामं ददतं शिचिस्थितम् हैयंगवं चौर्य विसंकितक्षणम् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमत् शनैः उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम् हैयंगवं चौर्य विसंकितक्षणम् उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम्
Thank you.
ಸುಲೋಖಲಾಂಗ್ರೇರುಪರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾಮಂ ದದತ ಸ್ವಸಿಷ್ಠಿತಂ ಹೈಯಂಗವಂ ಚಾರ್ಯಶಂಕಿತಕ್ಷಣಂ ಫಲಾಂಗ್ರೇರುಪರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮರುಕಾಯ ಕಾಮಂ ದದತಂ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಿತಂ ಶಂಕಿತಕ್ಷಣ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ಸುತಮಾಗಮತ್ಸನೈ ಕುಲೂಖಲಾಂಗ್ರೇರುಪರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಮರುಕಾಯ ಕಾಮಂ ದದತಂ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಿತಂ ಹೈಯಂಗವಂ ಚಾರ್ಯ ವಿಶಂಕಿತಕ್ಷಣಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಉಲುಖಲಾಂಗ್ರೆ ಉಲ್ಟಿ ರಕ್ಷಿ ಒಖಲಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಿತ ಉಪರಿ ಉಪರ್ ದೇವಸ್ಥಿತ ಬೈಠೆ ಹುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಮರಕಾಯ ಬಂದರೋ ಕಾಮಂ ಜೀ ಭರ ಕರ್ ಜಿತ್ನಾ ಖಾ ಸಕ್ತೆ ಥೆ ಕಾಮಂ ಜೀ ಭರ ಕರ್ ದದತಂ ಬಾಟತೆ ಹುವೆ ಸುಚಿ ಸ್ಥಿತಂ ಛೀಕೆ ಮೇ ರಖಿ ಹೈಯಂಗವಂ मक्खन तथा दूध से बनी अन्य वस्तुएं चौर्य विसंकित चुराने के कारण ससंकित क्षणम जिनकी आंखें निरीक्ष अधिकारियों को देखकर पश्चात पीछे से सुतम अपने पुत्र को आगमत आ गई शनै धीरे धीरे सावधानी से चोर को पकड़ना है जल्दी जल्दी दौड़ के आती तो आवाज आ जाता है इसलिए सनई सनई धीरे धीरे आ रही है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा उस समय कृष्ण माता उस समय कृष्ण मसाला पीसने वाले लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे। मसाला पीसने वाली लकड़ी होती है, हाँ?
अच्छा वो कुटने के लिए मतलब उखल कोई बहुत वजन नहीं था ना, मसाला पीसने वाली ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बड़ी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे चुपके से पीछे से उनके पास पहुंचे। तात्पर्य, माता यशोदा ने कृष्ण के मक्खन सने पद चिन्हों के सहारे उनका पता लगाया। उन्होंने देखा कि कृष्ण मक्खन चुरा रहा है, अतः वे हंसने लगी। तभी कौवे भी कमरे के भीतर घुस गए। कौपा जी लिख रहे, किंतु डर के मारे बाहर निकल आए। इस तरह माता यशोदा ने कृष्ण को मक्खन चुराते तथा उत्साह पूर्वक इधर उधर ताकते देखा। ताकते माने ताकते समझते हैं, भोजपुरी शब्द है ये। ताकना मैं देखना। भगवान की बहुत सुंदर मधुर लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं महाराज परीक्षित से। भक्त वात्सल्य की लीला है, आप सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध लीला। भगवान को बांधा गया उखल में, घटना इसी दिन आप कथा श्रवण करते हैं, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। माता यशोदा दिवाली के दिन एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी यशोदा एक बार पुत्र स्नेह पीछे कारण था कि बहुत सारा शिकायत कंप्लेन आ रहा था कि ऐसा करता है ये करता है। माता ने विचार किया कि अब अपने हाथ से शुद्धता से माखन निकालना है, माँ के हाथ का या पत्नी के हाथ से जो वस्तुएं भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उसमें स्नेह होता है, तो इसलिए अपने हाथ से निर्ममंथ स्वयं दधि, अपने हाथ से दधि मंथन कार्य प्रारंभ करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं नंद गेहिनी है, नंद महाराज की घर की है, नंद रानी है, उनके लिए ये कार्य अच्छा नहीं है। जिसके घर में हजारों हजारों दासियां हैं वो स्वयं दधि मंथन करे ये ठीक नहीं था, शोभा की बात नहीं थी, लेकिन पुत्र स्नेह के कारण माता यशोदा प्रारंभ की। बहुत सुंदर श्रृंगार का वर्णन करते हैं सुखदेव जी, छोमम वास पृथुक तटे बिभ्रति सुत्रनद्रम, कमर कस करके अपने पुत्र की सेवा के लिए तैयार हैं, रेशमी वस्त्र पहनी है, कानों में कुंडल, हाथ में कंगन, और मुख पर भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं का गान कर रही है। समय क्या है? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे है। उत्सुकता है कि प्रातः काल आज ही जल्दी से कृष्ण को माखन निकाल कर खिलाना है। जल्दी क्यों निकालना है? क्योंकि बच्चे जगते ही भूखे हो जाते हैं, उनको मुंह धोने की जरूरत नहीं है कि ब्रश करो तब भोजन दो और ये सब, दांत ही नहीं होता है। इसलिए माता यशोदा ने किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च, जिन जिन कृष्ण की लीलाओं को माता यशोदा देखती थी, उन लीलाओं को गाती थी, गा रही थी, आप सब ब्रह्म संगीता में रोज पढ़ते हैं, वैकुंठ गोलोक का की बात भी है, कथा गानम। भगवान के धाम में कोई सामान्य रूप से भी चलता है तो वह संसार के नृत्य से 100 गुना बड़ा होता है। साधारण चाल नहीं है वहां, यहाँ का नृत्य और वहां का चाल ये दोनों बराबर है। सामान्य विधि से भी कोई चले तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल झूमते हुए नृत्य करते हुए चल रहा है, और कोई बोलता है तो उसकी जो वाणी है वो कविता बन करके निकलती है। बनाना नहीं है, आंसू धरती पर भी कुछ ऐसे कवि होते हैं जो तुरंत उसी समय, आंसू का अर्थ होता है तत्काल, कविता बनाते जाते हैं, गाते जाते हैं। तो भगवान के धाम में सबके मुख से कविता निकलती है, गानम कथा गानम। जय श्री राधा गिरधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और भक्त इस तरह से प्रेम से भगवान की सेवा में लगे, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में लगे, ब्रह्म मुहूर्त, तो भगवान सो नहीं सकते हैं, जगे। और जग करके जो मंथन कार्य चल रहा था उस मंथानी को पकड़ लिया, और मां तो विभोर है बिल्कुल, गाने में उसका ध्यान नहीं है, लीला में मन लगा है, हाथ सेवा में लगा है, कंगन और कर्ण फूल करताल का काम कर रहे हैं, कमर में करधनी जो पसी है उसके नीचे छोटे छोटे घुंघरू हैं वो भी करताल का काम करते हैं, और दही के भीतर जो मंथानी चल रही है उसका आवाज थोड़ा गंभीर होता है तो वो आवाज मृदंग का काम कर रहा है, होता है ना दही में, कहां शहरों में तो ये सब, गांवों में भी अब बहुत कम रह गया, लेकिन इतना मधुर आवाज है, एक लकड़ी का पिस्टन लेकर और रस्सी से इस तरह से होता है, घर घर की जब मधुर दिव्य आवाज होती है, अद्भुत आवाज। उद्धव जी जब ब्रज में गए हैं भगवान का संदेश लेकर, तो उन्होंने देखा घर घर में मंथानी चल रही है, दही मंथन का कार्यक्रम हो रहा है, भागवत में लिखा है। अब तो दधि न श्रूयते कर्णात्, एक पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा कलयुग आ गया कि आंख से देखने की बात दूर रही, दही कान से भी सुनने को नहीं मिलेगा, और घी जागृत अवस्था की बात छोड़ो, घृतम स्वप्ने भी दुर्लभम, सपना में भी। अब आप घी मांगने जाइए तो डलडा देते हैं लोग, तो पंडित जो पंडितानी थी उसको आश्चर्य हुआ, तो कहते अरे मुग्ध है, आश्चर्य करने वाली, मुग्धे दुग्धस्य का बाचा, तुम दूध की क्या बात करती हो। तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, तक्र का अर्थ होता है पतला छाछ भी देवराज इंद्र को नहीं मिलेगा, शक्र को दुर्लभ हो जाएगा। शक्र भी शक्र को, शक्र का अर्थ होता है इंद्र, देवराज इंद्र को शक्र भी नहीं मिलेगा। शक्र माने माथा, दूध ही नहीं होगा तो कहां से माथा। तो बहुत मधुर दिव्य शब्द की ध्वनि हो रही थी और माँ अपने पुत्र स्नेह में ताजा माखन निकालने के लिए कृष्ण के लिए तैयार है। उसी समय भगवान जगे और पकड़ लिए मंथन, मंथन कार्य धीरे धीरे मंथानी को पकड़े, तब लीला से धीरे धीरे ध्यान उतरा माता यशोदा का कि अरे ये मंथानी गंभीर क्यों हो गया। तो देखती है कि आकर के मंथानी पकड़ रखा है। भगवान ये दिखा रहे थे, मैया तुम्हारे मन में इतना स्नेह आ गया, तुम इतना स्नेह मई माँ हो, ममता मई माँ हो, अब तुमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये वेद और शास्त्र का मंथन तो उनके लिए है जिनके हृदय में मेरे पति स्नेह नहीं, और स्नेह आ गया तो ये अंथन मंथन नहीं, अब तो तुम्हारे जिस हृदय में जो स्नेह है वो रस पीने की इच्छा है, हार्द्र रस, हृदय के रस को पीने की लालसा भगवान के मन में जगी, जिस हृदय से पुत्र के प्रति इतना स्नेह था। माता यशोदा बहुत प्रसन्न हो गई, काम में बाधा हो गया, मंथन कार्य अवरुद्ध हो गया, रुक गया, परंतु जहास मां प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न हो गई? प्रसन्न इस बात को सोच करके हुई कि हमारे पुत्र के हाथ में धीरे धीरे शक्ति आ गया। हाथ जोर से पकड़ करके मंथानी रोका, खुश हो गई। धीरे धीरे उसके शरीर में शक्ति आ रही है, तब तो ये अपने इतना छोटा सा बच्चा पकड़ा और मैं मंथानी चला नहीं सकता। माता पिता को बहुत आनंद होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सुखी होते हैं, तो हृदय से उनको इतना सुख मिलता है। बहुत प्रसन्न हुई और भगवान ये दिखा रहे थे, ये बंद करो, बहुत भूख लगा है, पता नहीं कितने दिन कितने घंटे के बाद माखन निकलेगा, मुझे तो तत्काल तम स्थान्य काम साध्य। बंधुओं जी, लीला ऐसी लीला है, अद्भुत लीला, जिसमें उनका नाम लेने वाला, उनसे प्रेम करने वाला न धनम न जन्म हो जाता है। धन जन स्वजन विद्या कविताम वा जगदीश कामय, जन्म जन्मांतर सारे कामनाओं का निष्काम होकर के उनके चरणों की भक्ति मांगने वाला, उस भगवान में भी काम आ गया। और काम जब पूरा नहीं होता है तो संजात कोप क्रोध हो गया, और क्रोध भी साधारण क्रोध नहीं हुआ, स्फूर्ता धरा, ऊठ कापने लगा, और संदस्य दद भी इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ, वह क्रोध भी भगवान के श्री विग्रह में जाकर धन्य हो गया। काम भी धन्य हो गया। बहुत लोग कहते हैं ना, ए निष्काम भजन करो, निष्काम भजन करो, मन में कोई कामना मत रखो, ये बड़ी कठिन काम है। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं तुम्हारे मन में जो कामना है उसको लेकर भजन करो, निष्काम भजन तो बहुत कम लोग करते हैं। निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति, निष्काम, अनंत कामना है और उसको खाली कर देना ये जीव के बस की बात नहीं है। तब जितनी कामना है उन सभी कामनाओं के साथ अकाम सर्व काम हुआ, और जिनके पास तुम जा रहे हो उनके पास कोई कमी नहीं है, वो आपकी सारी कामनाएं पूरी करेंगे। भगवान सर्वशक्तिमान है, सब चीज इसलिए पूरा करेंगे। तो इस लीला में काम भी आया और क्रोध भी आया। दांतों से अपने लाल लाल ओठों को दबा रहे। एक भक्त का भाव है मानो भगवान रजोगुण पर सत्वगुण को दबा रहे हैं, सत्वगुण के द्वारा रजोगुण को दबा रहे हैं कि रजोगुण लाल है, लाल माने रजोगुण। और क्रोध कैसे प्रकट होता है, काम ऐसा कैसे प्रकट होता है, रजोगुण समुद्र हुआ, रजोगुण का रंग लाल होता है और सत्वगुण का रंग उजला होता है। अपने छोटे छोटे उजले उजले दांतों से मानव ओठ को दबाने का अर्थ है, भगवान कहते हैं आगे मत बढ़ना। संदस्य दधि दधिमंत भाजनम, ठीक है, क्रोध पर नियंत्रण कर रहे हैं। भगवान के भीतर सामान्य क्रोध नहीं, क्रोध और काम ये सब आ नहीं सकते हैं। परंतु इस लीला में भगवान ने सबको धन्य किया, सबको स्वीकार किया, ठीक है, सबको नचा रहा है काम, सबको नचा रहा है क्रोध लोभ, और खाने का दूध पीने का लोभ आ गया, काम आ गया, क्रोध आ गया, सब धन्य हो गए भगवान की लीला में आकर। तो इस प्रकार से माँ जसोदा 2-4 किलो जो दूध था मचाने के लिए कृष्ण को, घटना आप सब जानते हैं, लीला की गोद में बैठी हैं, बैठे हैं भगवान, और माता यशोदा मंथन कार्य छोड़कर दूध पिला रही थी। दूध पिलाना पिला रही थी उसी समय घटना घटना हुई ये, कि जो पद्म गंधा गाय का दूध अंगीठी पर उबल रहा था तो बेचारा वो दूध भगवान के जसोदा जी के देखते देखते उफन करके आग में गिरने के लिए तैयार हो गए। तो भक्त लोग भाव देते हैं कि वो दूध ने विचार किया कि आज मैया के स्नेह में कमी होने वाली नहीं है और भक्त के हृदय रस को पीने से भगवान संतुष्ट होने वाले नहीं है। इतना देर तक स्नेह रस, भगवान को क्या चाहिए, स्नेह रस और पुत्र वात्सल्य स्नेह का रस लबालब भरा है माँ जसोदा के स्तन में, और इधर भगवान भी संतुष्ट नहीं है। जब लंबे समय तक इस तरह माँ और पुत्र की लीला को दूध ने देखा तो विचार किया कि इतना देर से मैं तपस्या कर रहा हूँ, आग में जल रहा हूँ, आज तो माँ के दूध से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, इसलिए ये इतना देर से किया हुआ तपस्या व्यर्थ है। और जब हमारा उपयोग भगवान नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में मेरा उपयोग नहीं होगा, तो अच्छा है कि कृष्ण के सामने ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसा भाव दूध में आया। अब आप विचार कर सकते हैं कि दूध भी विचार करता है, दूध में भी भाव आता है क्या? आध्यात्मिक जगत में कोई भी वस्तु जड़ नहीं होती, इस बात को समझना पड़ेगा। वहां की एक घास भी सच्चित आनंदमय है, एक घास भी, एक पत्ती भी, एक जड़ वस्तु भी जड़ नहीं है। अब वृंदावन बिहार की लीला पढ़िए, उस लीला में कृष्ण को वृंदावन में प्रवेश करने के पहले वृक्ष बिल्कुल सीधे खड़े होते, सीधे खड़े क्यों होते थे? क्योंकि अपने ऊंचे ऊंचे शिखाओं से दूर से ही कृष्ण का दर्शन करने के लिए बिल्कुल खड़े रहते थे, और जैसे जैसे कृष्ण नजदीक आ जाए तो वो अपने फल को और फूल को लेकर इतना झुक जाते थे कि आसानी से आराम से भगवान उस फल को तोड़ सके। दो वृक्ष आपस में इस तरह से झुककर कुंज बनाते थे कि श्याम सुंदर को धूप न लग जाए। इस तरह गिरिराज महाराज ऐसे तो बहुत कठोर दिखते थे, लेकिन कृष्ण का चरण जहां पड़ता था वो चरण मखमल से करोड़ों गुना सुंदर, बिल्कुल कोमल हो जाता था, पिघलने लगता था, द्रवित हो जाता था। गोपी जनों को सोच सोच करके बहुत कष्ट होता था कि इतने कठोर पत्थर पर तुम्हारे कोमल चरण चल रहे हैं, लेकिन गिरिराज जी महाराज साधारण सामान्य कोई पत्थर नहीं है। जिधर जिधर भगवान चलते थे वो कृष्ण के चरणों के लिए बहुत कोमल मखमल से भी स्पंज से भी करोड़ों गुना शीतल और कोमल भगवान के चरणों का स्वागत गिरिराज करते हैं। जितना चाहे विस्तार कर सकते हैं। तो सब चीज दिव्य है वहां, चिन्मय। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक ज्ञान है, वहां जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं। यहां तो जड़ है वो सोच नहीं सकता है, कुछ बढ़ नहीं सकता है, परंतु वहां पर एक घास हो, एक पेड़ हो, एक दूब हो, सब कुछ चिन्मय है। और सबको ये ज्ञान है कि कृष्ण की सेवा कैसे सुंदर विधि से करनी है, एक ही ज्ञान। दूध उबल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया, माता ने देख लिया, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है तो उसके जीवन में एक ही बात महसूस होती है कि मेरे अलावा जितने भी हैं ये सब भक्त हैं और मैं भक्त नहीं। शुद्ध भक्ति जब हृदय में प्रवेश करती है तो भक्त को अपने भीतर अभाव दिखता है, और गलत भक्ति जब प्रवेश करे तो दूसरे के भीतर अभाव दिखता है और अपने भीतर स्वभाव दिखता है। ये लगता है कि मैं ठीक हूं, बाकी उसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है। लेकिन शुद्ध रूप से भक्ति हो तो भक्ति का एक स्वरूप है कि अपने अंदर कमी, अपने अंदर दोष दर्शन करता है और दूसरे के दोष में भी गुण बुद्धि करता है। माता को लगा कि मेरा दूध तो इतना असीमित नहीं है, पी करके इसका पेट नहीं भरेगा, संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए उस दूध को बचाना है कृष्ण के लिए, चली बचाने के लिए। कृष्ण के लिए क्या, कृष्ण को संतुष्ट उसके पीने के लिए दूध चाहिए, इसलिए मंक मारूढ़ मपाय यत्सनम, बड़ी सुंदर आनंद हो रहा था माँ को भी, हाँ लाल लाल ओठ और उसके भीतर अनार के दाने की तरह छोटी छोटी दांतें, और बच्चा जब दूध पीता है तो उस दूध का जो लालिमा है और उस पर जब उसको खुशी मिलती है, मंद मंद मुस्कुराता है, माँ जब उसके सिर पर हाथ फेरती है तो बच्चे को भी परम आनंद और माँ को भी परम सुख प्राप्त होता है। ये तो गृहस्थ जीवन की बात, संसारिक बच्चों को इस तरह से करने में इतना आनंद आता है, फिर स्वयं आनंद ही नंद के गोद में, मैया जसोदा के गोद में खेल रहा है, इस तरह से बाल लीला का सुख देने के लिए भगवान दोनों आनंद में। परंतु दूध इधर विचार किया कि मेरा क्या होगा, हम तो तप कर रहे हैं, आग पर जल रहे हैं कृष्ण के लिए, और आज हमारा उपयोग होगा नहीं तो जलना अच्छा है। जरि जाओ सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हरो बिनु हुए, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ वो जीवन जल जाए तो अच्छा है जो आपका नहीं होता है, आपके लिए नहीं जीता है वो जीवन जल जाए, जरी जाओ सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन हुए, बिना तुम्हारा होकर के आपका बिना होकर के जो जीवन जी रहा है वो जल जाए तो अच्छा है। जल जाए जिहवा बावरी हरि नाम के बिना, सुना है ना? जो जीव भगवान के नाम का जप नहीं करती है अच्छा है कि वो जल जाए तो सुंदर। जीव लेने की जिहवा प्राप्त करने की सार्थकता तो ये है निरंतर उसके द्वारा भगवान के नाम गुण यश का वर्णन किया जाए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे।
माने अपने नम्रता बस मेरे भीतर तो कोई स्नेह नहीं है, ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको उतार करके रक्षा करनी चाहिए। एक संदेश था कि कृष्ण की सेवा के लिए कभी कृष्ण को बाहर भी किया जा सकता है, कृष्ण की के लिए कृष्ण को यदि किनारे भी बैठाना हो तो कोई चिंता की बात नहीं। इस तरह से, लेकिन इधर भगवान को क्या लगा, गोलोक छोड़ करके आया, लक्ष्मीपति हूं अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी, ब्रज में आया, मैया यशोदा के गोद में आया कि दूध पिलाएगी, और ये मेरा इतना अपमान इस घर में, इस गोकुल में। रासलीला में कभी कभी दिखाते हैं, पूछते हैं भगवान, मैया तुम्हें दूध प्रिय है कि पुत्र प्रिय है? दूध से प्रेम करती हो कि पुत्र से प्रेम करती हो? तो मैया यशोदा कहती है, नहीं लाला, मुझे तो तुमसे प्रेम है। और बार बार ऐसी कहने वाली माता यशोदा ने पुत्र को किया किनारे और दूध बचाने के लिए चली। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, दो चार किलो दूध बचाने के चक्कर में पड़ी हो, देखो मैं क्या करता हूं। व्यक्ति यही सोचता है, ये करूंगा तो ये बच जाएगा, इतना आ जाएगा, लेकिन उसके बाद कितना घाटा होगा ये विचार नहीं करता। भगवान ने कहा दो चार किलो दूध और दही बचाने के चक्कर में चली हो ना, देखो सैकड़ों किलो दही और माखन बर्बाद कर रहा हूं। और गई बचाने के लिए, भागवत में वर्णन है कि दूध अपने आप, माता यशोदा को कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप नीचे आ गया। दूध ने विचार किया, अपने स्वार्थ के लिए मैं माता और पुत्र के स्नेह में बाधा दिया, मेरा जीवन बेकार है जो माँ इतनी स्नेह से अपने पुत्र को देख रही थी। और कृष्ण भी अति आनंद से भक्त हृदय रस का आस्वादन कर रहे थे, दोनों के आनंद में मैं बाधक बना यह सोच करके, और दूध अपने आप नीचे आ गया। और लौटती हैं तो देखती हैं मटकी फूटा है, मथ रही थी वो फूट गया है और लड़के का पता नहीं। दूसरी माँ नाराज होती ना, यशोदा जी खुश हो गए, जहास तत्र तम च न पश्यति, माँ बहुत खुश हो गई। खुश क्यों हो गई? बोले गलती तो किया है लेकिन एहसास कर रहा है, अनुभव किया कि गलती हो गई, मटकी फोड़ने का गलती तो हो गया है उससे, लेकिन गलती करके भी वहां रहता क्या करोगी, तब लगता कि भाई लड़का उदंड है। लेकिन गलती महसूस किया, फील किया कि गलती हो गई है, इसलिए इस स्थान से अलग हो जाना चाहिए, डर गए भगवान। सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं क्रोध में जो मिलता है आदमी धड़ाधड़ मारता है, वहीं पर छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा था और नीचे से मारा, क्योंकि दही जितना दूर भरा होगा तो उतना दूर ऊपर मारने से तो आवाज ज्यादा होगी और नीचे दही के नीचे मारने से आवाज कम होगी। और कुछ आचार्य लोगों का कहना है कि भगवान ने बड़ी दिमाग से काम किया, पत्थर अत्थर से नहीं तोड़ा, मंथानी को ही धीरे से थोड़ा ऊपर से पटक दिया, मिट्टी का बना होता है, मंथानी से क्यों तोड़ा? बोले मंथानी से तोड़ दूंगा तो मैया को भ्रम हो जाएगा कि मेरे ही मथने में कुछ इधर उधर हो गया। भाई लड़का लाला ने गलती नहीं की है, मेरे ही मंथानी चलाने में थोड़ा कहीं लग गया होगा, मिट्टी की बात है। लेकिन चोर के दिल में कितनी भी सफाई हो तो डर तो हो ही जाता है। चौर्य विसंकित इच्छा भागे वहां से, भाग रहे हैं और माँ भी कोई बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही, वो देखा दूध को तो पास में ही है, और ये भाग रहे हैं, भाग भी रहे हैं तो दिमाग नहीं लगाया, फैल गया पूरा दही का मटका और भाग रहे हैं, चोर छुपना है, परंतु इतना बुद्धि नहीं है कृष्ण के पास कि दही के ऊपर नहीं चले। दही के ऊपर चल के जाएंगे तो क्या होगा, किस घर में छुपे हैं, किस घर में गए हैं, वो तो निशान बनता जाएगा। बालक है, इसको ज्ञान नहीं है। दही के ऊपर पांव रख करके जा रहे, मैया जसोदा ने फूटने की थोड़ी आवाज सुनाई पड़ी और कृष्ण वहां से चले वो भी आवाज सुनाई पड़ी, क्योंकि हाथों में जो कंगन है उसमें भी घुंघरू लगा है और कमर में जो करधनी है सोने का सुंदर उसमें भी लगा है और पांव में जो नूपुर है उसमें भी घुंघरू लगा है, और भले कितना भी बचा के चले लेकिन ये चीजों की आवाज आ रही है। मैंने देखा कुछ आवाज आ रही है, कुछ जोर से आवाज आया और कुछ चलने की आवाज भी आ रही है, और जैसे ही दूध से लौटी तो देखती हैं कि मेरा सब जगह बिखरा पड़ा है और कृष्ण नहीं है। क्या कर रहे हैं ये श्लोक में वर्णन है, उलूखलांग्रे उपरी, उलूखल का अर्थ होता है उखल के ऊपर, भगवान ये दिखा रहे हैं कि अपने गोद में रख करके सुंदर संस्कार नहीं दोगी तो अब हम खल के ऊपर हैं, खल में भी बहुत ऊपर का खल बनेंगे, छोटा मोटा खल नहीं बनेंगे, खल हमारे नीचे रहेगा और हम सब खल से ऊपर रहेंगे। प्रेम नहीं दोगी, अपने हृदय का दूध नहीं पिलाओगी तो हम दुष्ट के साथ रहेंगे, दुष्ट बन जाएंगे, फिर तुम देखना क्या हालत होती, व्यवस्थित हो गए उलूखलांग्रे उपरी व्यवस्थितम जी अवस्थितम, बिल्कुल बढ़िया से बैठे हैं। अंगी का अर्थ होता है चरण, उखल आपने देखा है ना, उखल का जो ऊपर का भाग होता है बीच में खोखला होता है और जो नीचे का भाग होता है चरण जो होता है वो बिल्कुल सपाट होता है, उखल को उलाट दिया, और उलाट करके उलट करके और उसके ऊपर चढ़ गए और क्या करने लगे, खाने लगे माखन, बासी माखन रखा हुआ था, भगवान ये दिखा रहे थे कि ताजा दूध नहीं पिलाओगी तो बासी माखन खाएंगे और बासी खा करके बीमार होंगे, फिर तुम मथुरा हॉस्पिटल में लेके चलना, तब तुमको पता लगेगा कैसे दूध नहीं पिलाने का क्या नुकसान होता है। और स्वयं तो खाए मस्ताय कामम ददतम, और बंदरों की जितनी इच्छा थी जी भर करके प्रभुपाद जी लिखते हैं, एकदम छक करके एकाचक खूब लुटा रहे हैं। आचार्य लोग कहते हैं लुटा इसलिए रहे हैं कि इसके पहले इन्होंने बंदरों से इतनी सेवा ली है जी में, बिल्कुल त्रेता युग में आए थे इधर नासिक के बाद आगे जब बढ़े तो हनुमान जी से दर्शन हुआ उनका, सुंदरकांड प्रारंभ होता है जहां से हनुमान जी से दर्शन हुआ बाली सुग्रीव, उसके बाद में कई एक करोड़ बंदर, दो चार नहीं, बंदरों की भी जाति होती है, अलग अलग जाति के कितने कितने बंदर राम जी की सेना में थे इसका वर्णन है। काले मुख वाले एक होते हैं, एक पूंछ काला लंबा होता है, एक सामान्य बंदर होते हैं, एक मुख लाल होता है, ये सब अलग अलग जाति के कितने करोड़ों करोड़ों की संख्या में एक एक जाति, मुझे याद नहीं आ रहा है, नील 18 जूथप बंदर, पद्म 18, 18 पद्म ये बंदरों के सेनापति थे, कमांडर, 18 पद्म, पद्म माने जानते हैं क्या नहीं, क्या ही दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब नील, नील के बाद पद्म आता है, इतने सेनापति कमांडर थे और एक एक कमांडर के पीछे कितने कितने बंदर थे, अब आप विचार करो। पद्म 18 यूथप इतने यूथों के पति थे, लेकिन एक भी बंदरों को एक बार भी नाश्ता भगवान ने नहीं दिया, क्या खा ही नहीं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास, खुद ही खाने के लिए तोड़ना पड़ता था तो कहां से देंगे, तो भगवान ने आश्वासन दिया घबराओ मत अगली बार जब आऊंगा ना जितना भी बचा हुआ आपका पेमेंट पगार है वो सब पूरा कर दूंगा। मतलब राम जी के अवतार में जो ड्यूज था बाकी बाकी जो बच्चा था वो इस अवतार में दे रहे हैं। मरकाय कामम दलत सिचिस सिकम, छीके पर रखा हुआ माखन है उसको खिला रहे, भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे घर में जो है केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि और भी जितने जीव जंतु आपस में है सबको बांट करके खाना चाहिए। दे तो रहे हैं लेकिन अपने से बड़े का परमिशन नहीं है, इसलिए एक प्रकार से चोरी कर रहे हैं, और चोर की क्या हालत होती है लगभग लगभग सबको अनुभव होता है, पैसा नीचे गिर गया हो किसी का पैसा हो और आप उठाना चाहते हैं तो एक हाथ पैसे पर और एक आंख दूसरे पर होती है, कोई देख न ले, चौर्य विसंकित क्षण का अर्थ होता है खा रहे हैं लुटा रहे हैं लेकिन ध्यान चारों तरफ है कि कहीं आ ना जाए, विसंकित क्षण है, चोरों का जो नजर होता है ना वो चौतरफा होता है कहीं कोई देख न ले, और चोरी कर रहे हैं गलती कर रहे हैं तो ताकत तो कम हो ही जाती है। वृंदावन में हम थे तो एक आदमी कहा जानते हैं महाराज चोरों की ताकत कितनी होती है, एक आदमी सोए में खांसी आ जाए तो चोर भाग जाते हैं, बस वो कितनी उनकी ताकत होती है ना। किसी को खांसी आ गई तो समझ जाता अरे घर वाले तो जगे हैं, भागो जल्दी आए। बड़ी सुंदर लीला है, भगवान के सुंदर सुंदर इक्षण नेत्र हैं और उन नेत्रों में क्रोध की का अंश है, मां पर क्रोध है, स्नेह का क्रोध है कि क्यों मैं मुझे गोदी से अपने अंक से उतारा क्यों। और इस प्रकार से चौर्य विसंकित इक्षण से निरीक्ष निकराम इक्ष भगवान ने देख लिया। क्या देखा कि पीछे से पश्चात पीछे से आगमत आ रही है, बिल्कुल आ भी कैसे रही है, बहुत जोर से नहीं आ रही है, सनई इतना आराम से आ रही है कि कहीं इसको पता न चल जाए, भाग न जाए, इसलिए धीरे धीरे आ रही। धीरे धीरे का अर्थ स्पीड भी कम है और पांव भी इतना आराम से रख रही है कि इसको पता न चल जाए कि कोई आ रहा है। सनई माता जसोदा ने देखा, फोड़ दिया है, गलती किया है, लेकिन यहां से हट गया। अंततः हमारे पुत्र को ये ज्ञान हो गया है कि गलती हो गई, लेकिन वहां से भागा भी है तो कोई दिमाग नहीं लगाया, बुद्धिमानी नहीं की गई के ऊपर पांव रखकर भाग रहा है और किस घर में जा रहा है। उस घर में बिल्कुल अंधेरा था, जिस घर में भगवान गए हैं तो बंदर, वहां पर बिल्कुल अंधेरा था। भक्तों का बहुत सुंदर भाव है, कहते हैं सरकार, एक भक्त कहता है आप जब माखन चुराते हैं अपने मैया के डर से आपको अंधेरे घर की आवश्यकता होती है, आपको अंधेरा घर बहुत पसंद होता है क्योंकि चोरी और गलती करने के बाद अंधेरा प्रिय होता है, अच्छे व्यक्ति को उजाला प्रिय होता है और चोर को अंधेरा प्रिय होता है। स्वामी जी ने लिखा है चोर ही चांद निरात की भावा, चोर को कहीं सुंदर चंद्रमा की प्रकाश युक्त रात्रि अच्छी नहीं लगती है। आपको सरकार जो अंधेरे घर की आवश्यकता होती है तो आपको छुपने के लिए मैंने एक इतना सुंदर अंधेरा घर रखा है कि आप उसमें छुप जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, मैया जसोदा भी थक जाएंगी पता नहीं चलेगा। बोले वो क्या है, बोले वो है अनादि काल से अंधकार से भरा हुआ हमारा हृदय है, ठाकुर आप आकर इसमें छिप जाइए, आपको कोई देख नहीं सकेगा, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, विराजिए। भक्त का एक भाव होता है कि आप हमारे भीतर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो भगवान चोरी कर रहे हैं, आचार्यों ने इस पर भी बहुत लिखा है, चोर भी है तो कोई साधारण चोर नहीं है। ब्रज में भगवान का सबसे प्रिय नाम है, रात में दिखाते हैं लोग, भगवान कहते हैं कि सबसे प्यारो, सबसे यदि प्रिय नाम कोई मेरा है तो माखन चोर है। दुनिया में भले कोई चोर हो लेकिन चोर को यदि कह दीजिए कि आप चोर हो तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब मुझे कोई चोर कहता है तो मुझे सबसे प्रिय लगता है। चोर सिरमौर श्याम सकल जहान के, सारे जगत के चोर नहीं है, चोरों के सिरमौर है। आचार्यों ने बहुत सुंदर लिखा है चौराग्रगण्यम, साधारण चोर नहीं है, चोरों का अग्रणी लीडर है। संसार के जितने लोग चोरी सीखे हैं ये सब इनसे निकला है। भगवान से चोरी भी निकलता है, क्यों नहीं निकलेगा। गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, कहते हैं सब कुछ मुझसे निकला है, ये चोरी कहाँ से निकला? चोरी भी इन्हीं से निकला है। तो इस तरह से भगवान चलाते हैं। एक भक्त तो बहुत सुंदर कहता है, बहुत दिन से चलाने की आदत तुम्हारी खराब हो गई है और अब मैं तुमको दंड दूंगा। दंड क्या दूंगा कि जैसे चोर को पकड़कर काले कोठरी में रखा जाता है, उसी तरह सदा सदा के लिए मैं अपने हृदय में तुमको बंद कर दूंगा और बाद में कोई मजिस्ट्रेट और जज तुम्हारा बेल नहीं करेगा। अनंत काल की सजा होगी तुम्हारी और तुम मेरे हृदय में बस उसी में बंद रहो, हृदय के कोठरी में तुमको बंद कर दूंगा। क्या भयंकर चोर है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांग नानाम च दुकुल चौरम पदास्थानाम च समस्त चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। इतना भयंकर चोर है कि उसका नाम यदि कोई ले ले तो नाम लेने मात्र से पूरा जीवन चुरा लेता है। संसार का चोर आएगा तो आपके घर का सामान ले जाएगा, फ्रिज ले जाएगा, पैसा ले जाएगा, कपड़ा ले जाएगा, बर्तन ले जाएगा, आपको तो नहीं चुराएगा ना। लेकिन ये इतना खतरनाक चोर है कि चोर नहीं आएगा, इसका नाम भी जिसके जीवन में आ जाए उसका सब कुछ चुरा कर ले जाता है। चोर यह विषम की परीक्षा। भगवान का ये दृश्य बहुत सुंदर है। भक्तों को ध्यान करना चाहिए कि किस तरह से बंदरों को लूट रहे हैं, खा रहे हैं और एक एक नेत्र लगा है अपने माँ की तरफ, कहीं आ न जाए। भय भी है, चौतरफा देख भी रहे हैं। चोर कैसे देखता है शायद आप सबको अनुभव है। एक काम करता है, देखता चारों तरफ कोई देख न ले। इस तरह से इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान के इस दामोदर लीला का वर्णन करते हैं। यहीं पर विराम करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।